नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से बात की, नेपाल में फिर से शांति और स्थिरता लाने के लिए भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश भर के आईटीआई को एआई संचालित प्रशिक्षण केंद्रों में बदलने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के राहुल गांधी के आरोपों को गलत और निराधार बताया। बिहार सरकार ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रूपये मासिक भत्ते की घोषणा की। भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न करने देने की वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। उत्तराखंड के चमोली जिले में बादल फटने की घटना में लगभग 14 लोग लापता, राहत और बचाव कार्य जारी। और जापान के टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का फाइनल में भाग ले रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से आज फोन पर बात की। श्रीमती कार्की ने भारत नेपाल के सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंधों को याद किया और प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम से अवगत कराया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री कार्की को नेपाल की प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी और नेपाल को भारत का निरंतर समर्थन देने का वचन दिया। प्रधानमंत्री ने नेपाल में हाल में लोगों के मारे जाने की घटना पर अपनी संवेदना प्रकट की और वहां शांति तथा स्थिरता लाने में श्रीमती कार्की के प्रयासों को भारत का समर्थन दोहराया है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीमती कार्की और नेपाल के लोगों को कल उनके राष्ट्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आयकर अधिनियम तथा वस्तु और सेवा कर में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। नई दिल्ली में पीएफआई वार्षिक मंच 2025 को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि वस्तु और सेवा कर को इस तरह से बनाया गया है कि इससे घरेलू जरूरत के सामान और कृषि उत्पाद पहले से अधिक किफायती हो जाएंगे। श्री वैष्णव ने यात्रियों को सुरक्षा के मुद्दे पर कहा है कि भारतीय रेलवे सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं पर हर वर्ष 1,30,000 करोड़ रूपये से ज्यादा खर्च कर रही है।
If you go back 11 years,
यदि आप 11 वर्ष पीछे जाएं, तो दुर्घटनाओं की संख्या 170 होती थी। सुरक्षा पर ध्यान दिए जाने और प्रौद्योगिकी में भारी निवेश के कारण दुर्घटनाओं की संख्या 31 रह गई है, जो कि एक महत्वपूर्ण सुधार है। लेकिन हमें यही नहीं रुकना है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित प्रशिक्षण केंद्रों में उन्नयन करने के लिए पूरी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। आज नई दिल्ली में इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट की वार्षिक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि आईटीआई का उन्नयन उद्योग की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए हो रहा है। श्रीमती सीतारमण ने कहा है कि पहले 2-3 वार्षिक बजट में सरकार ने श्रम शक्ति को कुशल बनाने के लिए प्रावधान किए हैं। निर्वाचन आयोग ने आज कहा है कि मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोप गलत और निराधार है। आयोग ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन वोट को हटाया नहीं जा सकता। आयोग ने कहा है कि 2023 में कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास किए गए थे और मामलों की जांच के लिए आयोग ने स्वयं प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इससे पहले श्री राहुल गांधी ने दावा किया था कि आलंद विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 6,000 मत हटाए गए थे। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सॉफ्टवेयर में हेरफेर के माध्यम से मतदाता सूची से नाम हटाए गए थे। जनसेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज सेवा पर्व के इस विशेष श्रृंखला में हम आपसे साझा कर रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने संबद्ध गतिविधियों में वृद्धि के माध्यम से कृषि क्षेत्र को एक विविध क्षेत्र में बदल दिया।
आज के भारत में कृषि क्षेत्र सिर्फ अनाज की खेती तक सीमित नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि का दायरा संबद्ध क्षेत्रों तक फैल रहा है, जिससे ग्रामीण परिवारों के लिए आय के नए स्रोत और आत्मनिर्भरता के अवसर पैदा हो रहे हैं। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश की सभी विकास योजनाओं का लाभ सभी किसानों तक पहुंचा रही है।
4 लाख करोड़ रुपया एग्रो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। ये मेरे देश के किसानों ने भी ताकत दिखाई। हम छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, देश के विकास की अनेक योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, सिंचाई की योजनाएं हो, क्वालिटी सीड्स हो, फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो।
भारत फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भी है और गांवों में डेयरी उद्योग समृद्धि का एक मुख्य आधार बन गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसे योजनाओं से देशी पशु नस्लों में सुधार हो रहा है। मछली निर्यात $20 बिलियन से अधिक का हो गया है, जो हमारे तटीय और आंतरिक जल क्षेत्रों की क्षमता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछली पालन और एक्वाकल्चर को आधुनिक बना रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की लाभार्थी अनीता सिंह ने अपनी प्रेरणादायक सफलता की कहानी साझा की है।
मेरा फिश फार्म का नाम वसुदेव फार्म है, जिसे 3 किस्तों में 30 लाख रुपए का सहयोग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मिला है। जमीनें तो थी ही, फिर हौसला बढ़ता गया।
एक ही फसल पर निर्भरता से आगे बढ़कर कृषि से जुड़े क्षेत्र हमारे किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं और साथ ही सतत भविष्य के लिए अनगिनत अवसर भी खोल रहे हैं।
बिहार में मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ अब कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों के बेरोजगार पुरुष और महिला स्नातकों को भी मिलेगा। इस योजना के तहत 2 वर्षों तक 1,000 रूपये का मासिक भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में योजना के विस्तार की घोषणा की। इससे पहले ये योजना इंटरमीडिएट युवाओं के लिए सिर्फ थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सूची में दर्ज पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद आतंकवादी समूहों और उनके समर्थकों को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न करने देने की वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। उत्तराखंड के चमोली जिले में कल देर रात हुई तेज बारिश से भारी नुकसान की खबर है। नंदनगर क्षेत्र में 4 गांव सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। 14 लोग लापता है और लगभग 20 लोग घायल हुए। तेज बारिश और मलबे के बहाव से 35 घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब तक लगभग 200 ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के साथ स्थिति की समीक्षा की तथा तत्काल राहत और बचाव कार्य के निर्देश जारी किए। भारत के शीर्ष भालाफेंक खिलाड़ी और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा आज जापान के टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में भाग ले रहे हैं। और जीएसटी परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर की दरें में कटौती की है। जीएसटी की नई दरों में 22 सितंबर से लागू होंगी। आज हम साइकिल उद्योग पर एक नजर डाल रहे हैं।
नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र, विशेष रूप से साइकिल क्षेत्र को महत्वपूर्ण राहत दी है, जिसका उद्देश्य आम आदमी के लिए पर्यावरण अनुकूल परिवहन को सुलभ और सस्ता बनाना है। किफायती, सुगम्य और वहनीय परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने के लिए साइकिल पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसी तरह साइकिल के पुर्जों पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। यह बदलाव इस महीने की 22 तारीख से लागू होने वाले है। मीडिया से बातचीत में साइकिल व्यापारी पुनीत मेहता ने इसका स्वागत किया और कहा कि इस कदम से युवाओं में साइकिल चलाने की आदत बढ़ेगी तथा स्वस्थ जीवन शैली को भी बढ़ावा मिलेगा।
गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमको एक गिफ्ट दिया है कि अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान रखो। साइकिल्स के प्राइसेस कम कर दिए, 12% जीएसटी दिया, 5% हो गया है, तो वो बेनिफिट आप लीजिए, बेनिफिट उठाइए उस चीज का, अपनी हेल्थ में भी इन्वेस्ट करो, स्क्रीन टाइम छोड़ो।
जीएसटी के इन सुधारों के कारण अब आवागमन सस्ता होगा और साथ ही छात्रों, फिटनेस प्रेमियों तथा युवा पेशेवरों के बीच साइकिल के उपयोग में वृद्धि होगी। सरकार के इस कदम से देश में उत्पादन बढ़ने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नए सुधार सोमवार से लागू होंगे। रोहन के साथ
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। ये मुठभेड़ गादीरास और फूलबागरी के बीच के जंगल में हुई। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने घटना की पुष्टि की है। फिलहाल सुरक्षा बलों द्वारा इलाके में तलाशी जारी है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।